हंसराज जू के भैंस पुत्र जुग महाबली आला और ऊदल चंदेल के सुलभ का आला के ईदल भो ऊदल के भो नरेंद्र पुत्र भय नामी और सनामी भो चंदेल राज।
महोवा के कवि कुल श्रेष्ठ जगनायक या चारण जगनिक राव द्वारा लिखित परमाल रासो की इस अमर बानगी में उल्लेख है बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों का। नमस्कार 92.7 बिग एफएम पर मैं आशुतोष राणा धरोहर में आज आपको सुनाऊंगा चंदेल कालीन लोक महाकाव्य आला खंड में वर्णित रणबांकुरे आला ऊदल की अमर कहानी।
मेरी मिट्टी के धरोहर है।
ये कहानी उस वक्त की है जब दिल्ली के राज सिंहासन पर महाराज पृथ्वीराज चौहान विराजमान। उन्होंने अपने आसपास के लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल राज परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के आगे अपना सर नहीं झुकाया था। राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की बेटी मलहना के साथ हुआ था। मलहना की दो छोटी बहनें भी थी, देवलदे और तिलका, जिनका विवाह राजा परमाल के दो वीर सेनानायक और सगे भाई दक्षराज और वत्सराज के साथ हुआ था। इस विवाह से महारानी मलहना इतनी खुश हुई कि उन्होंने देवलदे और दक्षराज के लिए दहसरपुरवा में एवं तिलका और वत्सराज के लिए सिरसा में दो अलग अलग भव्य महल बनवा दिए। उन्हीं दिनों राजा परमाल ने महोबा को अपनी नई राजधानी घोषित किया था। चंदेल राज परमाल की इस पवित्र भूमि में लगभग एक ही समय में 5 पुत्रों का जन्म हुआ जो आगे चलकर महोबा के पंचवीर कहलाए। महारानी मलहना की कोख से राजकुमार ब्रह्मकुमार का जन्म हुआ। ब्रह्मकुमार एक शूरवीर योद्धा था। राजा परमाल के राजपुरोहित के घर ढेवा नामक बालक का जन्म। ढेबा वीर होने के साथ ही ज्योतिष विद्या में भी निपुण था। ढेबा को आलाखंड में विपत्ति का साथी कहा गया है। उसने हर विपत्ति में अपने मित्रों का साथ निभाया। ढेबा के बारे में अलहत यानी आला गाने वाले आज भी ये गाते हैं।
मित विपत्तिया के ढेबा है ऐसो मित मिलन को ना।
विपत्ति के मित्र ढेबा हैं और ढेबा जैसे मित्र आसानी से मिलते नहीं हैं। इधर सिरसा में तिलका ने मलखान नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र की तरह कठोर था और युद्ध भूमि में वो अंगद की तरह पांव जमा कर लड़ता था।
क्या पांव पिछाड़ी तैन न जाने जंगा देख लड़े मलखान,
यानी पांव को पीछे नहीं जाने देता था और अपनी जांघों को टेक कर लड़ता था मलखान। इधर दहसरपुरवा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा के बाद देवलदे एक बार फिर से गर्भ से हो गई और तभी जब वो गर्भ से थी तो एक दिन मांडोगढ़ के बघेल राजा ने महोवा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। इस आक्रमण ने महोबा के इतिहास में जोड़ दिया एक नया पन्ना। इस आक्रमण ने एक नए समीकरण को जन्म दिया। क्या हुआ था बताऊंगा कुछ ही देर में। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर धरोहर मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ।
मेरी मिट्टी
फिर से स्वागत है आप सभी का धरोहर में। मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं कहानी आपको आला ऊदल की।
मेरी मिट्टी की धरोहर है।
मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया और चंदेल राज परमाल के भाई दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया। उन्हें बंदी बनाकर वो मांडवगढ़ ले गया। लेकिन इस पर भी बघेल राजा की क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और वत्सराज को मारकर उनका सिर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। आज भी अलहत उल्लेख करते हैं कि टंगी खुपड़िया है बरगद पर बरखा सहे सीत और घाम और आधी रतिया की बेला में रोबे ले अला को नाम। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद ऊदल का जन्म हुआ। कहते हैं जही दिन जन्म हुआ ऊदल का धरती धसी अढ़ाई हाथ, यानी जिस दिन ऊदल का जन्म हुआ उस दिन धरती ऊदल के भार से अढ़ाई हाथ यानी ढाई हाथ धस गई। लेकिन ऊदल की माता देवलते खुश न थी।
मत दो इसे मेरी गोद में, कुल नाशक है ये।
देवलती, एक माँ होकर अपने बेटे के लिए ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए।
यदि ऐसा नहीं होता मलहना, तो पेट में आने के 3 महीने बाद इसके पिता की मृत्यु नहीं हो जाती।
इसमें इस बच्चे का क्या दोष, ये तो नियति है।
जिस पुत्र ने अपने पिता का मुंह नहीं देखा, जिसके जन्म लेते ही धरती ढाई हाथ नीचे धस गई, वो कुलनाशक नहीं तो और क्या है, कहो ना।
देवलते, तुम कटु हो गई हो, तुमसे बहस का ये उचित समय नहीं है।
मलहना, जब आप समझ ही चुकी हैं, तो मुझे अकेले छोड़ने का कष्ट करें।
हाँ, बिल्कुल। आज से मैं इस बच्चे की माँ हूँ, अपने साथ ले जा रही हूँ इसे। पर एक बात याद रखना देवलदे, आगे चलकर यही बालक राज्य का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा।
ये धर्म की माता है मालंडे, जो ऊदल को दी हो बचाए।
धर्म की माता है मालंडे, जो ऊदल को लिए बचाए। राजा परमाल ने महोबा के इन 5 वीर आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मकुमार और ढेबा को एक साथ पढ़ाया लिखाया तथा अस्त्र शस्त्र को चलाने की कला से रूबरू कराया। देखते ही देखते 5ों बालक अपनी किशोरावस्था पार कर गए। साथ ही साथ इनकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रांत भर में फैल गए थे। इन सब में ऊदल की वीरता से राजा परमाल काफी प्रभावित थे। एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठकर ऊदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों के सामने कर रहे थे कि तभी आला ऊदल का मामा माहिल वहां आ पहुंचा। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा,
क्षमा करें महाराज, ऊदल तो साधारण सिपाही है, वो कब से तलवार बांधने लगा।
भांजे की वीरता से मामा प्रभावित नहीं था। माहिल किस ओर इशारा करना चाह रहा है बताऊंगा कुछ ही देर में। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर धरोहर, मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ।
मेरी मिट्टी की धरोहर है।
92.7 बिग एफएम पर फिर स्वागत है आपका। मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं कहानी आला ऊदल की।
मेरी मिट्टी के धरोहर है।
ऊदल की वीरता से राजा परमाल काफी प्रभावित थे। एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठकर ऊदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों के सामने कर रहे थे।
आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्म कुमार और ढेबा, ये 5ों इस आयु में भी बड़े बड़े योद्धाओं से कम नहीं है, और ऊदल की तलवार और युद्ध कौशल का तो क्या कहना। वाह।
कि तभी आला ऊदल का मामा माहिल वहां आ पहुंचा। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा,
क्षमा करें महाराज, किंतु ऊदल तो एक साधारण सिपाही है, वो कब से तलवार बांधने लगा। माना कुछ छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे ऊदल ने, किंतु छोटे मोटे युद्धों से कोई शूरवीर तो नहीं बन जाता ना महाराज। ऊदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज।
माहिल, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो।
पूरे राज दरबार में बैठे सभी सामंत एवं राजा परमाल खुद इस बात से चौंक गए। सब उत्सुकता से माहिल की तरफ देखने लगे।
क्षमा महाराज, किंतु यदि ये ऊदल वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके बाप का सर आज तक टंगा नहीं रहता महाराज। जब तक दक्षराज और वत्सराज के सर मांडवगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी महाराज। तो अगर उदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए,
क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीद ना खाए।
बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीद ना खाए, यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा परमाल ने माहिल की इस बात को काटने की कोशिश की। वो माहिल को चुप कराना चाहते थे ताकि ये बात उदल के कानों तक ना पहुंचे। लेकिन चुनौतियां खुद चलकर यदि शूरवीरों के पास नहीं आती हैं, तो कहा जाता है कि शूरवीर खुद चलकर चुनौतियों के पास पहुंच जाते हैं। चलती हुई बातों के बीच उदल वहां पर आ पहुंचे।
माहिल, तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनके भी सिर वहीं टंगे मिले? बस थोड़ा समय और।
किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? किसका सर कहाँ टंगा है?
कुछ नहीं उदल।
आओ भांजे उदल, तुम्हारी ही बात हो रही थी।
माहिल,
अरे बताने दीजिए ना महाराज, अभी तो आप प्रिय उदल की शूरवीरता के किस्से सुना रहे थे। अब जब शूरवीरता सिद्ध करने का अवसर है तो किस बात से भयभीत हो रहे हैं? और यदि अपने ही लोग यह नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? प्रिय उदल, मांडोगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है, वो ही बता पाएंगी, क्योंकि मैं तो बता नहीं पाऊंगा।
राजा परमाल की लाख कोशिश के बाद भी सच उदल के सामने आ चुका था। वे एक क्षण के लिए भी राज दरबार में नहीं रुके।
माँ, सच सच बताना माँ, हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडोगढ़ में टंगी है?
खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी खोपड़ी के बारे में।
उदल के मुंह से ये बात सुनकर देवलते डर गईं। वे समझ चुकी थीं कि आगे क्या हो सकता है। उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उदल टस से मस ना हुआ। तब देवलते को बोलना ही पड़ा कि टंगी खोपड़िया बाप चचा की, मांडोगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके कहवा उदल लड़े ते लाल, बचके आना मांडोगढ़ में राज बघेल जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब बाहन पे तब कह दही है तो कह मार।
मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ पुत्र, किंतु इस समय तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी?
माँ, क्षत्रिय की उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाया था, लव कुश ने पराक्रमी राम को कड़ी टक्कर दी थी, तब उनकी उम्र क्या थी? और फिर राम लक्ष्मण की क्या उम्र थी जब वो राक्षसों से लड़े थे?
देवलदे उदल के तर्कों को काट ना सके। तभी उसने उदल को मलहना के पास ले जाने की सोची। मलहना उदल की धर्म माता थी। देवलदे को महसूस हुआ कि अपनी धर्म माता की बात उदल अवश्य सुनेगा। क्या कहा मलहना ने उदल से? क्या उदल ने मलहना की बात मानी? बताऊंगा, बस थोड़ी देर में सुनते रहिए धरोहर मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम।
मेरी मिट्टी की धरोहर है।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं धरोहर, जहां मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं आपको कहानी आल्हा उदल की। मलहना के कक्ष में पहुंचकर देवलदे अपनी बहन के चरणों पर गिर पड़ी। मलहना को सारी घटनाओं की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने देवलदे को ऊपर उठाया और अपने पास बैठाया। फिर उसने उदल की ओर देखा।
हमारे पुत्र ने पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की है देवलदे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अपने प्राण का मोह तो कायर और मूर्ख करते हैं। इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है, विधाता भी उससे वो दिन छीन नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रहे बेटा, शत्रु कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म युद्ध करना।
मलहना ने उदल को धर्म युद्ध के पाठ पढ़ाए। वे उदल से बोली कि बेटा, हमेशा धर्म युद्ध करना, कभी किसी से डरना नहीं, शरण में आए व्यक्ति की हमेशा रक्षा करना, बालक बूढ़े और स्त्री पर कभी हाथ ना उठाना। युद्ध में जिस सैनिक के पास हथियार ना हो उस पर वार मत करना और भागते हुए सैनिक को तो कभी भी मत मारना। कभी भी शत्रु से पहले हथियार ना चलाना। अपनी धर्म माता की सीख को गांठ बांधकर उदल राजा परमाल से आज्ञा लेने के लिए पहुंच गए। राजा परमाल ने मांडोगढ़ में इंतजार कर रही मुसीबतों से उदल को अवगत करा दिया।
उदल, हमारी बात ध्यान से सुनो। मांडोगढ़ लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है और चारों तरफ गहरी खाई है और खाई के चारों ओर बबूल के वन। ऐसे दुर्ग को भेदना दुष्कर है। कैसे कर पाओगे? और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है?
क्षत्रिय की उम्र ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 लो जिए सिया, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार।
तुम्हारी वीरता पे हमें कोई संदेह नहीं है उदल, किंतु भय शत्रुओं की कुनीतियों का है। मैं नहीं जानता कि तुम लोग ये कैसे कर पाओगे, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि युद्ध में केवल शक्ति नहीं अपितु युक्ति की भी आवश्यकता होती है। यदि पराक्रम के साथ बुद्धि का भी उचित उपयोग किया जाए तो तुम्हारी विजय निश्चित है।
12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जीए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। 12 वर्ष की आयु कुत्ते की होती है और 13 वर्ष तक सियार जीता है राजा साहब, लेकिन क्षत्री का लड़का यदि 18 वर्ष के ऊपर जी जाए तो उसके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि रणभूमि में पहुंचने के सिर्फ 2 परिणाम होते हैं, वीरगति या विजय। महाराज से विदा लेकर उदल ने अपने बाकी चारों वीर भाइयों को बुलाया और सभी लोग एक साथ मिले और मांडोगढ़ को जीतने की योजना बनाने में जुट गए।
हम एकदम से मांडोगढ़ पर चढ़ाई नहीं कर सकते, पहले वहाँ के भेद जानने होंगे, उनके दुर्ग के बारे में जानना होगा, तभी यह युद्ध हम जीत सकते हैं। क्या कहते हैं भैया आला?
आप ठीक ही कह रहे हैं भ्राता मलखान।
आला, यदि मांडव के किसी सिपाही या अधिकारी को हम अपने साथ मिला ले तो?
नहीं भ्राता ब्रह्मा, आपका सुझाव ठीक है, किंतु शत्रु राज्य के किसी सिपाही को साथ मिलाना ये जोखिम भरा है। यदि उसने हमारे साथ ही विश्वासघात कर लिया तो?
ठीक कहते हो ढेबा, शत्रु के किसी भी व्यक्ति पर हम यूं ही विश्वास नहीं कर सकते।
वैसे मेरे पास एक योजना है।
ढेबा की बात मानकर सबने योगी का भेष धारण किया और अपनी अपनी माताओं के पास पहुँच गए, किंतु माताएं उन्हें पहचान नहीं पाई। माताओं ने उन्हें योगी ही समझ लिया। राजा परमाल ने उस दिन आला को महोबा का सेनापति घोषित किया।
सेनापति आला की, सेनापति आला की।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षर्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
राजा परमाल ने उसे क्रिलिया नामक घोड़ा दिया, ब्रह्मा को हरनागर नाम का घोड़ा दिया, मनोरथ नाम का घोड़ा ढेबा को मिला और बिंदुला नामक घोड़ा उदल को और मलखान को कबूतरी नाम की घोड़ी दी गई। महोबा की सेना तैयार थी और मांडोगढ़ की ओर कूच कर गई। नगाड़ों और दुदुम्बियों से आकाश गूंज उठा। महाराज परमाल की जय जयकार के नारे लगाए जाने लगे, किंतु क्या युद्ध इतना आसान था? क्या 5 नवयुवकों के दम पर एक महायुद्ध को जीता जा सकता है? जानेंगे अब से थोड़ी देर में। बस सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर धरोहर मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ।
मेरी मिट्टी की धरो
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं धरोहर और मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं कहानी आला उदल की।
मेरी मिट्टी की धरोहर है।
मांडवगढ़ की ओर कूच करने के कई दिन बाद महोबा की सेना ने मांडवगढ़ राज्य की सीमा के पास ही बबूरी बन यानी बबूल के जंगल में पड़ाव डाल दिया। सेना की बागडोर राजकुमार ब्रह्मा के हाथों में सौंपी गई। आला, उदल, मलखान और ढेबा योगियों के भेष में मांडव राज्य की सीमा में दाखिल हो गए और योगी होने के नाते उन्हें किसी ने रोका भी नहीं। कुछ ही देर बाद वे मांडवगढ़ किले के मूल द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया।
ठहरिए।
अलख निरंजन, कहो वत्स, क्या समस्या है?
आप लोग कहाँ से आ रहे हैं?
सुदूर हिमालय से।
इतनी दूर से? कोई विशेष काम?
वत्स, हम सन्यासी हैं, हिमालय से चले हैं दक्षिण के हिंदू सागर तक। रस्ते में तुम्हारा ये नगर आ गया, इसलिए हमने सोचा कि इस नगर की सेवा ग्रहण कर ले। सुना है यहाँ के राजा बड़े दयालु हैं।
सो तो ठीक है, लेकिन यहाँ ठहरेंगे कितने दिन?
अगर सन्यासी को ये पता होता कि वो कितने दिन ठहरने वाला है, तो फिर वो सन्यासी ही क्यों होता? मन हुआ तो सालों, वरना एक क्षण। मगर वत्स, तुम्हें कोई असुविधा हो तो हम आगे की ओर चले जाएंगे।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन पूछना मेरा काम है। आप बुरा मत मानिए, मांडवगढ़ में आप सभी का स्वागत है।
अंदर से अनुमति मिलने के बाद द्वारपाल उन चारों योगियों को अंदर ले गया। अंदर पैर रखते ही उदल की दृष्टि वट वृक्ष पर पड़ी। वट वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर दो सिर टंगे थे, दक्षराज और वत्सराज के। ये देखकर उदल अपने आप को रोक नहीं पाया, और शायद द्वारपाल उदल के मानसिक उद्वेग को पहचान गए।
अरे छोटे बाबा जी, पेड़ पे टंगी उन खोपड़ियों को क्या देख रहे हैं? इस नगर में और भी सुंदर चीजें हैं, उन्हें देखिए, उनका आनंद लीजिए।
अब तुम हमें सिखाओगे कि क्या देखना है?
आला ने हालात को संभालते हुए कहा,
स्वामी उदयानंद, आप सन्यासी हैं, किंतु पेड़ पर दो शीश देखकर उद्विग्न हो गए। सन्यासी को किसी घटना से विचलित होना शोभा नहीं देता। एक सन्यासी के लिए मृत्यु अंतिम सत्य नहीं होता।
क्षमा करें गुरुदेव, भावना के ज्वार को रोक नहीं पाया, किंतु इतना विभत्स कृत्य कौन कर सकता
है? अरे स्वामी जी, हमें इन सब से क्या लेना? आप पधारे हमारी नगरी में।
योगी आगे बढ़ गए। जब सारे योगी रनिवास में रानी कुशला के पास पहुंचे तो उनका बहुत आदर सम्मान किया गया। फिर रानी ने उनसे भजन गाने का आग्रह किया। आला ने अपनी ढबली निकाली, मलखान ने मृदंग और ढेबा ने बांसुरी, और उदल अपने मीठे स्वर में गाने लगे, और उन्होंने वहां पर समा बांध दिया।
हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी अखियां,
हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी।
देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां,
हरि दर्शन
कहते हैं कि महुबरी बाज रही आंगन में, युवती देख देख ठग जाए, और राग रागनी उदल गावे, पक्के महल दरारा खाए। वाह, ऐसे दिव्य संगीत को सुनकर रानी मुग्ध हो गई। उन्होंने मोतियों से भरी थाली योगियों को भेंट कर दी। योगी मोतियों को हाथ में लेकर बड़ी उत्सुकता से देखने लगे।
स्वामी जी, इतनी उत्सुकता से क्या देख रहे हैं?
माता, ये किस वृक्ष के फूल हैं? बहुत ही सुंदर है, अप्रतिम।
योगियों की इस सरलता से रानी और भी प्रभावित हुई। फिर रानी कुशला ने आला से कहा,
महाराज, ये मोती हैं, सागर में पाए जाते हैं, अनमोल हैं।
तो फिर हमारे लिए ये किस काम के माता? हम तो निर्मोह की राह पर चल पड़े हैं। हमारे गुरुदेव का यह आदेश है कि थोड़ा भोजन अधिक भजन। इन मोतियों को लेकर हम क्या करेंगे माता? इन्हें आप ही रख ले।
महाराज, यहाँ हमारे महल में प्रायः योगी महात्मा और संत आते हैं, लेकिन अहोभाग्य हमारे कि आप लोग यहाँ पधारे, और ऐसा प्रतीत हुआ कि सच्चे योगियों के दर्शन हो गए हैं। तो महाराज, निसंकोच आप हमें बताएं कि हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं।
माता, गांव खलिहानों में घूमने वाले हम योगियों का राजमहल में यह पहला पदार्पण है। हम चाहते हैं कि आप हमें इस दुर्ग की एक परिक्रमा करवा दें तो अच्छा हो।
बस इतनी सी बात? राजमहल की परिक्रमा क्या? यदि आप यह राजमहल भी मांगते तो हम निसंकोच आपको दे देते।
रानी ने अपने गले से 9 लाख हार उतार कर योगी के हाथ में रख दिया और राजकुमारी विजय सेना को पूरा दुर्ग दिखाने का आदेश दिया। इस प्रकार वीरों ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। अब आगे का रास्ता और कठिन था। एक चुनौती उनके सामने आने वाली थी। क्या थी वो चुनौती? क्या ये वीर अपने उद्देश्य में सफल हो पाए? जानने के लिए सुनते रहिए धरोहर, मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ।
मेरी मिट्टी की धरोहर है।
92.7 बिग एफएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं धरोहर आशुतोष राणा के साथ। और आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी वीर शिरोमणि जावा
था। लेकिन तुम्हें धर्म युद्ध का भली भांति ज्ञान है, इसलिए तुम्हारे इस युद्ध में अब मैं तुम लोगों के साथ हूं। अब मैं जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। ये जो सामने दीवार है उसके पीछे एक सुरंग है जो यहां से कोसों दूर बबूरी वन में निकलती है। ये दुर्ग सब तरफ से इतना सुरक्षित है